Gandhiji lived a simple life. Almost all of the modern leaders today seem to be engaged in some corruption or dishonest practices. How did he keep himself above the temptations of the selfish and petty politics of his time? Gandhiji was never worried about his own success, but of the success of Mother India as a whole. He never did anything for his selfish needs. He lived and died for Mother India. Gandhiji was an active person, and I wonder how he maintained his vegetarianism, simplicity, humility, and how he still had time to pray every morning and evening with the masses of people. Today, in our busy lives, we have forgotten about the simple things in our life. So once again, I would ask Gandhiji how we can create time for these simple things in our life. Evil. Evil in the world exists, but how can we apply ahimsa to take the evil out? Doing nothing about it, it's not going to make the problem better, but it'll make the problem even worse than it is. Gandhiji taught us to respond to violence by using nonviolence. As we see in the United States today, someone with a gun enters a religious place such as a gurdwara and opens fire indiscriminately. I would ask Gandhiji how we can respond to problems like this. Gandhiji had a special way to deliver his messages. Today, we have so many ways to communicate, but we say a lot less than we should. I would ask Gandhiji how we can spread his messages of truth, ahimsa, satyagraha, with Twitter, Facebook, and through texting, because everyone uses one of these types of communication. Gandhiji, he would always find a way to incorporate these in our lives because he always found the good in whatever he saw. Gandhiji died more than 65 years ago, but if I met him today, I would ask him how he incorporated the values of simplicity, nonviolence, communication, brotherhood, and avoiding temptation in his life. Thank you. Namaste.
Thank you very much, Daksha. It was a very nice speech. Sahana bhavatu, sahanau bhunaktu, sahaviryam karavavahe, tejasvina vadhitamastu, ma vidvishavahe. Upasthit sudhijano, देवियों, हम कठ उपनिषद की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। पिछले 3-4 हफ्तों से आप ओम की व्याख्या सुन रहे थे और उसके आगे की कड़ियों पर हम आते हैं। जो ओम में आपने चार पाद पढ़ा, चार पाद मतलब क्वार्टर, प्रथम पाद अ, ये समग्र सृष्टि और इंडिविजुअल लाइफ में मेरी जो जागृत अवस्था है, दूसरे पाद में आपने पढ़ा उ, सुना इस संसार की जो अदृश्य अवस्था और मेरे लाइफ में जो स्वप्न अवस्था, तीसरे पाद में या तीसरे क्वार्टर में आपने पढ़ा इस संसार की जो प्रलय अवस्था वो ओम से इंडिकेट होता है, मेरे जीवन की जो सुषुप्ति अवस्था। फिर आपने ये भी जाना कि जो ओम की जो चौथा अक्षर है जिसे तुरीय कहते हैं, जो फोर्थ क्वार्टर है, चतुर्थ पाद ओम, जैसे वो अदृश्य है, इनविजिबल है, अनडिस्क्राइबेबल है, अवर्णनीय है, ऐसे ये जो चर अचर संसार आपको दिखता है, एनिमेट और इनएनिमेट ये पूरा दुनिया दिखता है, इसके बाहर तीन चौथा ही, थ्री फोर्थ क्वार्टर जो है अदृश्य अव्यक्त रूप में रहता है। जैसे ओम का चौथा पाद अदृश्य है, मेरे जीवन की जो चौथी दशा है मुक्त दशा, वो भी अदृश्य है, और इस संसार की जो चौथी दशा है अदृश्य दशा, जिसको आजकल मॉडर्न साइंस में हम डार्क एनर्जी के रूप में आविष्कार किया है, उद्घाटन किया है, उसकी चर्चा हमने पिछली बार सुनी थी। ये जो तीन प्लस एक की चार की जो संस्कृति है, उसमें पूरे भारतीय संस्कृति सभ्यता भरी पड़ी है, उसकी चर्चा और कभी करेंगे। तो उसी चौथा पाद जो उस आत्मा का मेरे अंदर शुद्ध रूप है, परमात्मा का इस ब्रह्मांड में शुद्ध रूप है, उसी की चर्चा अगले मंत्र में। न जायते म्रियते वा विपश्चिन् नायं कुतश्चिन् न बभूव कश्चित् अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये आत्मा मेरे अंदर की जो आत्मा है, और इस विशाल ब्रह्मांड में जो परमात्मा है, ना वो मरती है ना वो पैदा होती है, ना वो जन्म लेती है ना वो मरती है, ना ये किसी से बना है ना इससे कोई चीज बना है, ये अजन्मा है, नित्य है, हमेशा रहने वाला है। खाली रहने वाला नहीं, इसका फॉर्म में भी कोई चेंज नहीं होता, रूप में भी कोई बदलाव नहीं होता, ये हमेशा जवान रहने वाला है। ये जहां रहता है वो मरता है, शरीर मरता है पर शरीर में रहने वाला नहीं मरता, ये ब्रह्मांड मरता है पर इसके अंदर रहने वाला नहीं मरता। सज्जनों देवियों, मरने का मतलब दो चीजों का अलग होना। हिंदू दर्शन में जन्म होने का मतलब होता है दो अलग अलग चीजों का मिल जाना, मृत्यु का मतलब है वो मिले हुए दो चीजों का अलग हो जाना। इसीलिए जब आप गीता पढ़ते हैं या कोई भी हिंदू पुराण ग्रंथ पढ़ते हैं, आपको हमेशा ये सिखाया जाता है, बताया जाता है कि मरने पर दुख मत करना, क्योंकि मरना एक पड़ाव है, एक स्टेज है, एक चैप्टर है। लाइफ तो बियॉन्ड डेथ है, जीवन तो मरने के बाद भी है, मरने के बाद फिर जन्म होता है। तो मतलब जन्म उसी का तभी होगा जब दो चीजें मिलेंगी। घड़ा पैदा होता है जब मिट्टी पानी वगैरह मिलते हैं, एक घर नया खड़ा होता है जब वो लकड़ी लोहे सीमेंट ईंट वगैरह वगैरह सब एक खास प्रोसेस से मिलते हैं, एक खास प्रोसेस से मिलते हैं, तो जो कल तक जमीन था वहां पर एक घर खड़ा मिलता है। तो क्योंकि ये काफी सारी चीजों के मिलने से बना है, तो नेचुरली ये जो चीज मिलता है वो उसका बिखरना जरूरी है, ये नेचर का लॉ है। तो जब वो चीजें बिखरेंगे तो घर नामक चीज गायब हो जाएगा, पानी जिसको हम पानी कहते हैं वो दो चीजों से तीन चीजों से बना है, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। तो जब तीन चीजों से मिलके पानी बना है तो मतलब है कि पानी को एक दिन टूट नष्ट होना है, क्योंकि जैसे ही वो मिले हुए तीन अणु बिखर जाएंगे तो पानी पानी नहीं रहेगा। मतलब पानी की पैदाइश ही पैदा जन्म होता है तीन चीजों के मिलने से, तो पानी एक दिन नष्ट होगा जब तीनों चीजें बिखर जाएंगे। मैं मरता हूं क्योंकि मैं बना हूं दो चीजों से, शरीर और आत्मा से। जब आत्मा शरीर को धारण करती है गर्भ में, बहुत सूक्ष्म अवस्था में एक शरीर को ग्रहण करती है, तो आप खुशी मनाते हो कि बच्चा आने वाला है। जब आपको डॉक्टर खुशखबरी देता है और जब वही आत्मा शरीर दो बिखर जाते हैं, उसे आप मृत्यु कहते हो। सीधी सी बात है, जब दो जो जहां जहां मिलना है वहीं वहीं बिखरना है। आत्मा पैदा नहीं होती है, मरती भी नहीं है, क्योंकि आत्मा एक से अधिक चीजों का मिलावट नहीं है। शरीर क्यों नष्ट होता है? शरीर हजारों चीजों का मिलावट है, इसमें लिक्विड भी है, इसमें ठोस चीजें भी हैं, इसमें वायु भी है, एयर भी है, इसमें तेज भी है, एनर्जी भी है, बहुत सारे चीजों के मिलावट है। तो बिखर जाते हैं तो खत्म, शरीर भी खत्म। आत्मा क्योंकि अपने आप में एक सिंगल एंटिटी है, एक तत्व है, उसमें कुछ मिलावट नहीं है, इसीलिए बिखरने का कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि ये बिखर नहीं सकता, इसीलिए आप कह नहीं सकते हो कि आत्मा मरता है, क्योंकि ये किसी के जोड़ने से नहीं बना है। आत्मा अजर अमर है। आत्मा का मतलब, जैसे मेरे अंदर एक छोटी सी आत्मा एक 5 फुट 5 इंच 6 फुट 8 इंच के शरीर में है, इसी तरह एक परमात्मा जो आपके गिनने से बाहर लंबाई चौड़ाई के इस विशाल ब्रह्मांड के अंदर समाया हुआ है। दूसरी चीज, क्योंकि आत्मा किसी से मिलकर नहीं बना, इसीलिए बिखर नहीं सकता, मरेगा नहीं, न जायते म्रियते। दूसरी चीज, ये किसी से पैदा नहीं हुआ है। आप जब एक चश्मा बनाते हैं तो उसमें कुछ प्लास्टिक है, कुछ कांच है, कुछ लोहा है, कुछ और केमिकल्स हैं, कुछ मैटर है, बहुत सारे चीजों बनने के बाद चश्मा का जो एग्जिस्टेंस, जो सत्ता है, वो सामने आती है। तो चश्मा जब बनने से पहले चश्मा नहीं था, घर घर बनने से पहले नहीं था, आप अपने जन्मदिन से पहले नहीं थे, ये धरती धरती बनने से पहले नहीं थी, ये किसी से बने हैं, कुछ चीजों से बने हैं। आत्मा या परमात्मा दो अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। जब आत्मा कहते हैं, ये दोनों चीजों को इंडिकेट करते हैं। मैं परमात्मा नहीं हूं, ना परमात्मा का कोई टुकड़ा हूं, ना परमात्मा कोई दास हूं, मैं हूं, परमात्मा परमात्मा है, दो अलग अलग एंटिटी है, उसकी चर्चा कभी आगे करेंगे। तो जब मैं आत्मा कहता हूं तो आत्मा परमात्मा दोनों के लिए बात आती है। ये आत्मा किसी से पैदा नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये आत्मा या परमात्मा नहीं था और कुछ चीजें थी जिनके मिलने से ये पैदा हुआ, इट इज प्रोड्यूस्ड, ये उत्पन्न हुआ, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि जब ओम की व्याख्या में आपने पढ़ी सुनी, जब कुछ भी नहीं था वही था, तो इसीलिए आत्मा कार्य नहीं है, किसी का कोई प्रोडक्शन नहीं है, ये किसी का इफेक्ट नहीं है, ये किसी का कॉज भी नहीं है, कारण भी नहीं है। आत्मा से कुछ पैदा नहीं होता है, एक बीज से पेड़ पैदा होता है, फिर पेड़ से फिर बीज पैदा होता है, ये साइकिल है। मैं अपनी मां बाप से पैदा होता हूं, फिर मैं किसी दूसरे इंसानों का कारण बनता हूं। आत्मा किसी से नहीं पैदा हुआ, ना इससे कोई चीज पैदा हो सकता है, क्योंकि पैदा होने का मतलब है दो चीजों का मिलने पर जो सामने आता है रिजल्ट। इसीलिए आत्मा किसी के कारण नहीं, किसी के कार्य नहीं। पर आप कहेंगे कि ईश्वर तो आप ही दुनिया कहती रहती है, ईश्वर सबका कारण है। कारण वैसे ही है जैसे घड़ा बनने में आकाश कारण है। आपके जो मकान बनाए, अगर आकाश नहीं होता, स्पेस नहीं होता, क्या आप ये बिल्डिंग बना सकते हैं? सब कुछ के होने के बावजूद आपके पास ईंट है, आपके पास लोहा है, सीमेंट है, पैसा है, मिस्त्री है, काम करने वाले मजदूर हैं, सब कुछ है, पर स्पेस नहीं है, आकाश नहीं है, तो बन नहीं सकता। आकाश इस घर का कारण है, पर ऐसा कारण जिसको आप बता नहीं सकते, ये एक सामान्य कारण है, जनरल कॉज है। ईश्वर समस्त सृष्टि का कारण है, बिल्कुल वैसा जैसे आकाश समस्त दुनिया का कारण है। क्योंकि वो ना कारण है ना कार्य है, ना इसीलिए ना वो मिटता है ना पैदा होता है। जो लोग नास्तिक हैं, आत्मा को नहीं मानते हैं, इसीलिए नहीं मानते हैं कि उन्होंने परख के देखा है, रियलाइज किया है कि आत्मा होती नहीं है। नास्तिकता तभी नास्तिकता होती है जब वो तर्कों पर आधारित हो, जो लॉजिक पर बेस्ड हो। कभी कभी नास्तिक व्यक्ति इसीलिए होता है क्योंकि वो आस्तिकों के जो हाव भाव है, जो उनका बिहेवियर है, जो एक्टिविटीज है, उसके देख करके लोग नास्तिक होते हैं। जैसे यूरोप में, अमेरिका में ज्यादातर जो लोग हैं धीरे धीरे नास्तिक हैं, काफी परसेंटेज नास्तिक है। अमेरिका के 30%, पूरे यूरोप में 30% के करीब करीब जो क्रिश्चियन है वो नास्तिक हो चुके हैं। किसी को नहीं, इसीलिए नहीं कि उनको कोई ईश्वर या आत्मा पर भरोसा नहीं है, इसीलिए कि जिस तरीके से आत्मा या ईश्वर को प्रेजेंट किया जाता है उन चीजों पर उनको कोई भरोसा नहीं है। वो तो मुझे भी नहीं है, और आप अगर बारीकी से देखेंगे आपको भी नहीं होगा। अगर कोई ईश्वर ऐसा है जो आपके प्रार्थना सुन के पिघल जाता है और आप एक निकम्मा आदमी को करोड़ों रुपए दे देता है क्योंकि वो प्रार्थना करता है, और एक मेहनत करने वाला आदमी जो 24 घंटे मेहनत करता है पर वो ईश्वर को प्रार्थना नहीं करता, ईश्वर इसको गरीब बना देता है, अगर ऐसा कोई ईश्वर है, उस ईश्वर को मानने लायक आपको लगता है ऐसा ईश्वर मानने लायक है? ये तो गली के बेईमान नेता से भी बदतर है। जब हम ईश्वर को इस रूप में प्रेजेंट करना चाहते हैं तो जिनका थोड़ी बहुत अकल काम करता है, अकल तो सबके अंदर है, जिनका अकल काम करता है वो नास्तिक हो जाते हैं। ईश्वर को जिस रूप में इंसान ने प्रेजेंट किया, प्रस्तुत किया, जो उस दायरे के अंदर नहीं मानता, हम उसको नास्तिक कहते हैं।
विज्ञान आत्मा को नहीं मानता, उसके अपने लॉजिक है। हमेशा ध्यान रखिए, कोई साइंटिस्ट अगर आत्मा को मानता है वो साइंटिस्ट हो ही नहीं सकता। आत्मा को मानने के लिए आपको साइंस से परे भी दुनिया है उससे परखनी पड़ेगी। मतलब आप लेबोरेटरी में या लॉजिक से हर चीज को प्रूफ नहीं कर सकते। मेरे खुद के अस्तित्व को भी प्रूफ करने के लिए कोई लेबोरेटरी नहीं बना है। उसको जानने की एक दूसरी तरीका है। जब पहली बार टेस्ट ट्यूब का कंसेप्ट आया कि अब बच्चा मां के पेट से नहीं टेस्ट ट्यूब में पैदा हो सकता है, बन सकता है, उसके गर्भ को वहां पाला जा सकता है और उसमें से बच्चा हो सकता है। टेस्ट ट्यूब में उसको फर्टिलाइज करके फिर मां के गर्भ में डालते हैं। तो नास्तिकों ने हल्ला मचाया, देखा आत्मा फात्मा कुछ नहीं है, वो तो वैज्ञानिक भी बना लिया इंसान। फिर बात आई क्लोनिंग की। अब बड़ी क्लोनिंग की चर्ती है। क्लोनिंग मतलब कलमी, जैसे आप पेड़ों के डाली को काट के थोड़ा उसमें कुछ गोबर फोबर रख के पट्टी बांध देते हैं, महीने भर के बाद उसमें जड़ निकल जाता है, फिर आप काट के लगा देते हो, उसको कलमी कहते हो। मतलब पेड़ के बीज से पेड़ उगाने की जरूरत नहीं है, वो आप उसके किसी भी अंग से भी दूसरा पेड़ पैदा कर सकते हो। वैसे हमारे मॉडर्न साइंस ने क्लोनिंग से बच्चे पैदा करने लगे, अब शुरू हो गया प्रोसेस। अब जरूरी नहीं है कि मां बाप के मिलने से बच्चा पैदा होगा, मां को गर्भधारण कर, कुछ जरूरत नहीं है। अब तो आपके पास एक कहीं से भी आपके हड्डी के कुछ इंजेक्शन में कुछ भी ले सकते हैं, आपके बाल से भी लेकर के आपके जैसा लाखों खड़ा करा सकते हैं। फिर लोग डरने लगे, अब तो ईश्वर गया, आत्मा गई, अब आत्मा कहाँ है? साइंटिस्ट बना डालते हैं, इंसान कुत्ता बिल्ली बना डालेंगे, तो आत्मा कहाँ है? मैंने पिछली बार भी कहा था, जितना जितना साइंस डेवलप होता है, नए नए थ्योरीज आते हैं, हिंदू दर्शन इतना मजबूत होता है। साइंस सिर्फ एक बॉडी बनाता है, एक शरीर को बनाने की गुण कला सीखता है। आत्मा शरीर में प्रवेश करता है, जब वो शरीर प्रवेश करने लायक हो जाता है, मतलब इतने बड़े शरीर में नहीं, सूक्ष्म शरीर में, तो आत्मा प्रवेश करती है। अभी तक शरीर नेचुरल वे से प्राकृतिक रूप से बनता था तो आत्मा प्रवेश करती थी, अब साइंस उसमें आर्टिफिशियल वे से शरीर बनाता है, क्लोनिंग से बनाए, टेस्ट ट्यूब से बनाए और किसी उपाय से बनाए, और अगर उसमें वही तत्व है, वही एलिजिबिलिटी है, वही कैपेबिलिटी है आत्मा को रख धारण करने की, तो उसमें आत्मा आ सकती है और वो कि जीव बन सकता है। विज्ञान सिर्फ शरीर बनाता है, क्योंकि जो मॉडर्न साइंस जिसको हम कहते हैं वो मैटर पर काम करता है, चेतना पर नहीं। तो इसलिए आत्मा अलग चीज है, ना वो मरती है ना पैदा होती है। आत्मा को शरीर में प्रवेश करते ही एक व्यक्ति का जन्म होता है, मां बाप हो या विज्ञान हो, वो उस माहौल को क्रिएट करते हैं, उस शरीर को क्रिएट करते हैं जिसमें एक आत्मा आ सके। आत्मा तो अजर अमर नित्य शाश्वत चिंतन है, ना वो मारती है ना वो मरती है। हंता चिन्मन्यते हंतुम हतश्चिन्मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते
ना आत्मा मार सकती है ना मर सकती है। जो मानता है आत्मा मारती है या मरती है वो आत्मा को नहीं जानते हैं। मारना मरना शरीर का काम है। अभी हमने समझा मरने का मतलब क्या है, दो अलग चीजें जो मिले हुए हैं अलग हो जाना, अलग होते ही बिखर जाते हैं, उसी का नाम मृत्यु है। आत्मा मर नहीं सकती क्योंकि उसमें ऐसी कोई अलग अलग कंपोनेंट्स नहीं है जिनके मिलने से बना है कि वो बिखर जाएंगे। मार नहीं सकती, मारने के लिए साधनों की जरूरत है, हाथ चाहिए, पैर चाहिए, आंख चाहिए, नाक चाहिए, कान चाहिए, पैर चाहिए। आत्मा का कोई शरीर नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई रस नहीं है, कोई गंध नहीं है, तो निराकार निर्विकार है। फिर कैसी है वो आत्मा? अगर आप कहते हो आत्मा है या परमात्मा है तो फिर किस रूप में है? अगला मंत्र है, अगले स्लाइड में। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा सजंतोर्निहितो गुहायां तमक्रतु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमान मात्मनः। अणु से भी अणु है, आत्मा का जो मेजरमेंट है वो अणु से भी अणु है। अणु मतलब बहुत सटल थिंग, उससे भी छोटा है। पर महतो महीयान, दुनिया में जो सबसे बड़ा चीज है, सबसे बड़ा चीज किसको हम कहेंगे? स्पेस, महाकाश, आकाश, शून्य, उससे भी बड़ा है। ये दुनिया में जो बड़ी सी बड़ी चीज है उससे भी बड़ी है, जो छोटी सी छोटी अणु है उससे भी छोटी है। ये दोनों आपको लगता है एक दूसरे के विपरीत है, कंट्रडिक्टरी है, ऐसा नहीं है। दो कंट्रडिक्टरी दिखने वाले चीज एक दूसरे को सप्लीमेंट करते, एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। जब भी आप महान होंगे तो आप तभी महान हो पाएंगे जब आप सूक्ष्म होंगे। जितना आपका रूप स्थूल होगा उतना आप कम जगह घेरेंगे, जितना आपका रूप सूक्ष्म होगा उतना आप अधिक व्यापक होंगे। देखिए एनर्जी, ऊर्जा, ताकत, शक्ति, उसकी हजारों फॉर्म है, रूप है। आग भी उसी का फॉर्म है, आपकी गाड़ी भी उसी के एक रूप में चलता है। मैं बोलता भी हूं उसी के एक एनर्जी के कारण, मेरी एनर्जी लेवल कम हो जाए मैं बोलने लायक नहीं बचूंगा, आप सुनने लायक नहीं रहेंगे। ये एसी भी चलती है भी एनर्जी से, ये बल्ब, ये लाइट, सब कुछ किसी ना किसी, ये दुनिया की हर चीज किसी ना किसी शक्ति से चलती है। ये शक्ति का अलग अलग रूप है, ये सूरज है, ये तारे हैं, ये जो जो गैलेक्सी है ये भी शक्ति के एक एक रूप है, एनर्जी है। कोई गैस के रूप में, कोई अग्नि के रूप में, कभी करंट के रूप में, कभी लाइटनिंग के रूप में, कभी डाइजेस्टिव पावर के रूप में, कभी आपकी गाड़ी चलाने की ताकत के रूप में, अलग अलग रूप में। ऊर्जा हर जगह है, दुनिया में जहां कुछ भी नहीं वहां भी ये ऊर्जा है। इसीलिए तो आप पढ़ते हैं कि जो दृश्यमान ब्रह्मांड है, इस दृश्यमान ब्रह्मांड से जो परे दो अदृश्य ब्रह्मांड है उसको भी साइंस ने नाम दिया डार्क एनर्जी। जहां कुछ भी नहीं वहां जो कुछ है वो भी एनर्जी है, ऊर्जा है। ऊर्जा का फॉर्म क्या है, रूप क्या है? वो सूक्ष्म है, वो रूप रहित है। ईश्वर, आत्मा या परमात्मा क्यों सब जगह है, व्यापक है, ऑल परवेडिंग है, बिल्कुल उस ऊर्जा की तरह? क्योंकि ऊर्जा की तरह ये भी सूक्ष्म है, अणु है। आत्मा अणु से भी अणु है क्योंकि वो बड़ा से भी बड़ा है, वो बड़ा से भी बड़ा है क्योंकि वो अणु से अणु है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं है, एक दूसरे के विरोधी नहीं है, एक दूसरे के कंट्राडिक्ट करने वाले नहीं है, एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे का शर्त है।
जरूरत है। अणोरणीयान महतो महीयान, फिर मिलेगा कहां? इतने बड़े संसार में हर जगह ईश्वर है, तो फिर हम ढूंढते हैं ईश्वर को कहां? पानी में, आकाश में, पहाड़ों में, मंदिरों में, तीर्थों में, मस्जिदों में, वगैरह वगैरह, बाबाओं में, गुरुओं में। इंसान की बुद्धि जितनी छोटी होती जाती है उतने छोटे छोटे जगह ढूंढता है। अब तो इंसानों में भी लोग भगवान ढूंढने लग जाते हैं, और खास करके गुरुओं में। सबसे उल्लू टाइप के जितने प्राणी हैं वो गुरुओं को भगवान मानते हैं। ईश्वर कौन है पता है? जिसने अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाया, और आपका गुरु एक चींटी नहीं पैदा कर सकता, सुई नहीं बना सकता, सिर्फ आपको दो चार लेक्चर दे देते तो आप चरणों में ऐसे गिरते जैसे भगवान यही है। वो गुरु तो पता नहीं उसका भगवान क्या हालत बनाएंगे, पर वो गुरुओं को भगवान मानने वालों की धरती में पता नहीं, वो तो इंसान के रूप में उल्लू से बदतर लोग हैं मेरे नजर में, तो बड़े गिरे हुए लगते हैं। जो गुरुओं को भगवान मानता है या भगवान की तरफ पूजता है, अपनी मां बाप को पूजना छोड़ देते हैं। जिसने असलियत में स्कूल कॉलेज में सिखाया उसको भी नहीं पूछते, चार लाइन धोत कुछ वो उपनिषद का ज्ञान का प्रवचन दे दिया तो ऐसे गिर जाते हैं, मान लो इसी ने ही मुझे पैदा किया है। ये अति मंद बुद्धि वाले इंसान को भगवान मानते हैं। चलिए ये तो साथ में आपको एक अपनी बात बता दी। तो वो कहां मिलेगा? हम अलग अलग जगह ढूंढते ही ईश्वर को। मंत्र कहता है आत्मास्य जंतुर निहितो गुहायाम। ये जंतु, जंतु मतलब प्राणी, व्यक्ति, कोई भी चींटी हो, कोई सेल हो या इंसान हो, वो तुम्हारे अंदर है गुहा में। गुहा कहते हैं केव, गुफा। गुफा का शब्द क्यों यूज किया? क्योंकि जब जंगलों में गुफाओं में होता है दिखता नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है। दुनिया में ढूंढने की जरूरत नहीं, खुद के अंदर झांको मिलेगा। हमारी प्रॉब्लम है कि हम बाहरी दुनिया में ज्यादा झांकते, अंदर नहीं। तुम अंदर जाओगे तो उसको पा सकते, वो तुम्हारे अंदर भी है, वो सब जगह है, तुम्हारे अंदर भी है, तो अंदर देख सकते हो। वो सर्वव्यापक है तुम्हारे अंदर भी। जंतुर निहितो गुहायाम, पर देखो ना कैसे, मुझे क्यों नहीं दिखता? तमक्रतु पश्यति, उसको देखता है कौन? मैं और आप नहीं, जो अक्रतु हो। क्रतु मतलब एक्शन, कर्म, मानसिक कर्म, संकल्प जिसको कहते हैं। जब तुम इच्छा रहित हो जाओगे, इच्छाओं से परे उठ जाओगे, तब तुम्हें भी दिखने लगेगा। इच्छाओं से परे, पाने की चाहत, पसंद ना पसंद, राग द्वेष, इनसे जब परे हो जाएगा व्यक्ति, उसी को प्राप्त, उसी वही देख सकता है। और जब आप देखोगे, उसको जानोगे, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं क्या जरूरत है ये आत्मा की, उसका समाधान देता है, रिजल्ट देता है कि अगर तुम खुद को जान पाए, ईश्वर को जान पाए, तो तुझे लाभ क्या मिलेगा? क्योंकि हर चीज के पीछे तो कारण होता है ना, क्यों क्यों करे, लाभ क्या? वीत शोक, शोक रहित बन जाओगे, दुख रहित बन जाओगे, कहोगे मैं तो वैसे ही सुखी हूं। हमारे सुखों के अंदर दुख छुपा होता है। ऐसा नहीं कि जो जो गरीब है वो दुखी है, उसका मकान नहीं बना, जैसे मकान बना वो दुखी है, बड़े से मकान में बैठकर भी आदमी बोर होकर दुखी है, टाइम नहीं कट रहा है। दुखी, दुखी होने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए, बिना कारण, कारण ना होना भी कभी कभी दुख का कारण हो जाता है। कि सब कुछ तो ठीक क्यों है? इसीलिए आप देखेंगे जब फिल्में देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, वो हमेशा उसके अंदर एक क्लाइमेक्स बनाते हैं। अगर कोई क्लाइमेक्स होगा ही नहीं तो फिल्म फ्लॉप हो जाएगा। तो हम भी कभी कभी जब हमारा लाइफ बहुत स्मूथली चलता है फिर हम उसको दुख नहीं कहते, हम कहते हैं बोर। बड़ा बोरियत है लाइफ में, ये बोरियत भी तो एक दुख है। फिर हम चाहते हैं मेरे लाइफ में भी कुछ क्लाइमेक्स आए। हम दुखों को भी एक, हम सुखों को भी दुख में कन्वर्ट कर देते हैं। कभी आपको याद है जब पहली बार आप अमेरिका आने का आप खबर मिला कि अमेरिका जा सकते हैं, कितनी खुशी हुई होगी। अब तो पता नहीं वो खुशी तो क्या, अब तो लगता है अमेरिका आपके गांव के पिछवाड़े जैसा ही है, कोई खास फर्क क्या। उस समय आपको कितना एक्साइटमेंट था पहली बार आपने सोचा कि आप घर खरीदने लायक, घर खरीदूंगा, नए घर में जाऊंगा। अब उस घर में जो 2 साल से रह रहे हैं तो वो घर कैसा लगता है, अब बेचने को मन करता है, उससे भी बड़ा घर चाहिए। पहली बार आपने जब पहली कमाई में पहली छोटी सी गाड़ी खरीदी, कितनी एक्साइटमेंट था, रात भर नींद नहीं थी, सुबह चलाऊंगा। 2 साल के बाद वो गाड़ी अब बेकार लगती है, देखते ही गुस्सा आता है, इतनी घटिया गाड़ी, इस दुनिया का सबसे गरीब मैं ही हूं, मेरी अच्छी गाड़ी तो मिस्टर अमुक का है। मेरा हर सुख एक पल के लिए होता है, अगले पल में वो दुख में ही कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। जब हम इस खुद को जानते हैं, आत्मा को जानते हैं या परमात्मा को जानते हैं, मेरा वो दुख भी सुख में कन्वर्ट होगा, कैसे होगा वो अगले बार चर्चा का विषय है। आप जरूर आए, फिर अगले बार आपको बताएंगे। ओम शांति।
तुम बिन और ना दूजा प्रभु।
बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की, योगेश्वर भगवान कृष्ण चंद्र की, महर्षि स्वामी दयानंद की, ओम का झंडा। आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति प्रणव ध्वनि। सबको यथा योग्य अभिवादन। नमस्ते
नमस्ते।